ये आकाशवाणी है, अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश अब रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। उन्होंने आज जम्मू कश्मीर के कटरा में चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। श्री मोदी ने 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं जम्मू कश्मीर के विकास को नई गति प्रदान करेंगी।
उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। यहाँ जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अपनी शिकस्त को याद करेगा।
6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान चिनाब और अंजी पुल का उद्घाटन किया। चिनाब पुल विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है, वहीं अंजी पुल भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है। दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं की वैश्विक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए आज कहा कि देश के युवाओं ने विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मोदी ने युवाओं को गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में उम्मीद केंद्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उम्मीद केंद्रीय पोर्टल वक्फ संपत्ति प्रबंधन और प्रशासन में पारदर्शिता लाएगा।
आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये उम्मीद पोर्टल ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके, पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करे।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले की निंदा करने और भारत को समर्थन देने के लिए मध्य एशियाई देशों के प्रति आभार व्यक्त किया। नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत मध्य एशियाई देशों का विश्वसनीय विकास साझेदार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की कमी कर दी है। इस कटौती के बाद रेपो दर 6% से घटकर 5.5% हो गई है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस फैसले की जानकारी दी। वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इस कटौती से अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा।
दोनों ही प्रयासों की बदौलत बाजार में अतिरिक्त नकदी और वो भी कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकती है। इससे शहरी इलाकों में खास तौर पर मांग बढ़ने की उम्मीद है और मांग बढ़ने से इसका सीधा सीधा फायदा हमारी जो विकास दर, जिसका अनुमान 6.3 से 6.8% के रहने के बीच की बात है, वो उसको फायदा पहुंचेगा। और सरकार भी ये कह रही है कि अगर शहरी इलाकों में भी खपत बढ़ जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 6.8% तक बढ़ सकती है। तो रिजर्व बैंक के फैसले से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि मांग बढ़ेगी, खपत में तेजी आएगी और इसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को देखने को मिलेगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2025 परीक्षा 3 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह परीक्षा 15 जून को निर्धारित थी। सिक्किम में मंगन जिले के लासेन में फंसे सभी पर्यटकों को आज निकाल लिया गया है। बचाव अभियान की निगरानी कर रहे मंगन जिले के पुलिस उपायुक्त और अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी कारोबारी एलन मस्क के बीच सार्वजनिक विवाद के कारण टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है। नैस्डेक एक्सचेंज में टेस्ला के शेयरों ने अपने मार्केट कैप से 150 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की, जो एक दिन में उसका अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।